يا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں، یہ آیات اس کلاس کے اندر ہم کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، ان کے معارف و مسائل تقریباً مکمل ہو ہی گئے تھے، لیکن ایک آخری بات اس کی ہم دوبارہ سے کرنا چاہ رہے ہیں، اگر پہلے ہو چکی تھی، ورنہ اگر پہلے نہیں ہوئی تھی تو پھر پہلی دفعہ ہی پڑھیں گے اس کو. ان آیات کے اندر یہ جو نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ ان یشاء اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے، ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے. اللہ ان یشاء اللہ، سوائے ان کے جن کو کہ اللہ چاہے. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں، یعنی جاہلوں جیسے اعمال کرنے والے ہیں، جاہلوں جیسی ایٹیٹیوڈ رکھنے والے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ایسے ہی ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، جو کہ انسانوں اور جنوں کی شکل میں شیاطین ہوتے ہیں. وہ جو شیاطین ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو، تو وہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ظاہر سی ہی بات ہے کہ جو نبیوں والا کام کرتے ہیں تو ان غیر نبی انسانوں کے بھی وہ دشمن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے جو نبیوں والا کام کرتے ہیں، کیونکہ کام سے پہچان ہوتی ہے نا. اصل میں تو وراثت جو ملتی ہے تو وہ کام کی بنیاد پر ملتی ہے. ٹھیک ہے، مال پیسے کی وراثت نہیں، بلکہ عزت کی اور مرتبے کی جو وراثت ملتی ہے اپنے بڑوں سے. کہ بڑا بڑا عزت والا تھا تو چھوٹا بھی عزت والا کب بنے گا؟ جب وہ کام کرے گا جو کہ بڑا کرتا تھا. ٹھیک ہے، مال پیسے کی تو وراثت ویسے ہی مل جاتی ہے کہ بڑے صاحب مر گئے تو اب ان کے بیٹے بیٹیوں کو جو ہے وہ وراثت تقسیم ہو گئی. لیکن وہ وراثت کس کون سی والی ہوتی ہے؟ وہ مال و دولت والی وراثت ہوتی ہے، اور زمین زیور والی وراثت ہوتی ہے. لیکن عزت والی وراثت ایسے نہیں ملتی کہ بڑا مر گیا تو چھوٹے کو عزت بھی مل جائے گی، نہیں، بلکہ وہ کام کی بنیاد پہ ملتی ہے. تو جو بڑوں والا کام کرتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو کہ بڑوں کے پاس تھا. ٹھیک ہے، جس میں عزت بھی شامل ہے اور دشمنی بھی شامل ہے. اگر بڑوں کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا تھا تو وہ دشمن پھر ان کے چھوٹوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے. تو دشمنی بھی وراثت میں ملتی ہے اور عزت اور مرتبہ بھی وراثت میں ملتا ہے کام کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال हमने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए शयातीन अल इंस वल जिन, यूही बाउदहुम इला बाउदन, एक दूसरे की तरफ जो है ना वो छुपे छुपे तरीके से सरगोशियां करते हैं, और जुखरुफ अल कौल गुरूरा, मुलम्मा की हुई बातें एक दूसरे को धोखा देने के लिए, एक दूसरे को धोखा देते हैं। हालांकि ये जो नबियों के दुश्मन होते हैं, तो वैसे तो उसूल ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो नबियों के जो दुश्मन है तो वो तो आपस में दोस्त होने चाहिए ना, ठीक है। जो नबियों के दुश्मन हैं, चाहे वो इंसानी शयातीन हो, चाहे वो जिन्नी शयातीन हो, तो वो तो आपस में दोस्त होने चाहिए ना, ठीक है। और दोस्त जो है वो तो अपने दोस्त को धोखा नहीं देता, दोस्त अपने दोस्त को धोखा नहीं देता, ठीक है। दोस्त तो अपने दोस्त के साथ सच बात करता है, ठीक है। लेकिन जब नबियों के साथ दुश्मनी करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला इवन दोस्तों के दरमियान भी जो है वो दुश्मनी पैदा फरमा देते हैं। तो अब वो जो नबियों के दुश्मन आपस में दोस्ती करते हैं, तो फिर वो दोस्ती भी धोखेबाजी वाली दोस्ती होती है, वो दोस्ती भी धोखेबाजी वाली दोस्ती होती है, ठीक है। इसी वजह से ये शयातीन, इंस और जिन, ये एक दूसरे को भी धोखा देते हैं, ये एक दूसरे को भी दोस्त धोखा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी दोस्ती से तो दुश्मनी बेहतर, ऐसी दोस्ती से तो दुश्मनी बेहतर, तो इस वजह से शयातीन के साथ हमने दुश्मनी रखनी है, क्योंकि उनकी दोस्ती जो है ना वो बर्बादी है, उनकी दोस्ती भी धोखाबाजी ही है, तो उनसे दुश्मनी क्यों ना रखें, है ना भाई। तो दुश्मनी रखना ये सही बात है ना, शयातीन के साथ। नबियों से दोस्ती रखेंगे तो खुद ब खुद ही शयातीन से दुश्मनी हो जाएगी, ठीक है। नबियों का काम करने वालों से दोस्ती रखेंगे तो खुद ब खुद ही शयातीन से दुश्मनी हो जाएगी, ठीक है। तो नबियों के दुश्मनों की सफ में तो हमने खड़ा नहीं होना है ना, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला ने ये नुक्ता बयान फरमाया, वलौ शाअ रब्बुका मा फअलू, अगर तुम्हारा रब चाहता ना, नबी अलैहिस्सलाम से खिताब करके फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर आपका रब चाहता ना तो ये लोग ये काम नहीं कर सकते थे। कौन सा वाला काम? आपकी दुश्मनी वाला काम, ठीक है। ये आपकी दुश्मनी वाला काम, और ये जो आपस में फिर वो प्लानिंग करते हैं आपके खिलाफ, अगर आपका रब चाहता तो ये नहीं कर सकते थे ये वाला काम, ठीक है। यानी रब जो है वो फोर्सफुली उनको रोक सकता है, फोर्सफुली उनको रोक सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फोर्सफुली नहीं रोका अपने नबियों की दुश्मनी करने से, ठीक है। तो इसकी तफसीर हम पढ़ना चाह रहे थे मारिफुल मसाइल के बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ में से, कि हज़रत शफी रहमतुल्लाह ने इस बात की तफसीर में लिखा कि इसके बाद आखिर आयात तक मुसलमानों को फहमाइश और खिताब है, मुसलमानों को फहमाइश, फहमाइश का मतलब क्या होता है? फहम देना, समझाना, ठीक है। तो मुसलमानों को समझाया जा रहा है और उनसे खिताब किया जा रहा है कि तुम्हारा काम दीन हक पर खुद कायम रहना और दूसरों को सही तरीके से पहुंचा देना है, ठीक है। यानी जो दीन तुमने सीखा है ना नबियों से और नबियों के वुरसा, उलमा और मशाइख से, तो नंबर वन काम तुम्हारा क्या है कि तुम खुद उसके ऊपर अमल करो, खुद कायम रहो उसके ऊपर। और दूसरा काम तुम्हारा करने का क्या है कि तुम उनको अच्छे तरीके से, सही तरीके से आगे पहुंचा दो लोगों तक, दूसरे लोगों तक, ठीक है। जिसको के बलागुल मुबीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा काम है, नंबर वन काम नहीं है, लेकिन नंबर टू काम तो है ना, नंबर वन काम तो खुद उसके ऊपर अमल करना है, और नंबर टू काम क्या है? आगे पहुंचा देना। तो बलागुल मुबीन जो है ये ऑप्शनल काम नहीं है, ये करने का काम है, ये जिम्मेदारी है हमारी। फिर भी अगर वो हठधर्मी करने लगे तो फिर उनकी फिक्र में पड़ना नहीं चाहिए कि क्योंकि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना नहीं है। तो यहाँ पे फिक्र में पड़ने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उनके लिए दुआएं छोड़ दें या आप जो है वो बलागुल मुबीन का काम ही छोड़ दें, ये मतलब नहीं है कि उनकी फिक्र में ना पड़े, यानी बस उन्होंने नहीं माना अब भाड़ में जाए वो, ये नहीं मतलब है इसका, जहन्नुम में जाए वो ये इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने आप को आप हलाक ना कर लें, ठीक है, यानी ऐसा ना करें कि आप जो है ना वो खुद ही डिप्रेशन में मुब्तला हो जाएं, खुद ही जो है वो आप एंजाइटी के मरीज बन जाएं, खुद ही जो है वो आप पता नहीं और किस किस के हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का जो है वो आप मरीज बन जाएं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से बात पहुंचाने की मेहनत में लगे रहें, चाहे वो माने चाहे वो ना माने, ठीक है, ये नहीं करें कि वो नहीं मान रहे हैं तो अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हुए हैं, गुस्से का शिकार हुए हुए हैं, और जो है वो यानी अपना नुकसान कर रहे हैं, ये सब ना करें, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो उर्दू को भी समझाना पड़ता है ना, वरना तो उर्दू सुन सुन करके भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा इसका मतलब ये है कि आप ये बोल दें कि मैंने तो अपना काम कर दिया अब वो जाए जहन्नुम में, ये मतलब नहीं है इसका ना, ठीक है। तो हजरत ये नहीं फरमा रहे कि उनकी फिक्र में पड़ना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, बस इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने की कोशिश ना करो, ठीक है, अगर जबरदस्ती बनाना होता, देखिए ये जुमला जो है ना अभी जो हम जुमला पढ़ रहे हैं ना ये बड़ा अहम जुमला है, क्योंकि कुरान मजीद की बहुत सी आयात ऐसी हैं कि जिनको पढ़ करके जो है ना वो बंदा बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाए, बिल्कुल ही गलत समझ ले उसको, कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको मुसलमान बना देता, तो भाई फिर यानी अल्लाह ने चाहा नहीं तो फिर उसका क्या कसूर कि जो मुसलमान नहीं बना, ठीक है, तो बजाहिर अल्फाज से लगता है कि ये तो जुल्म है कि अल्लाह ताला ने चाहा ही नहीं कि कोई मुसलमान बने, तो इसी वजह से तो वो काफिर रह गया, तो ये तो जुल्म जुल्म हो गया ना कि अल्लाह ताला ने बस उसको जहन्नुम में डालने का फैसला फरमा दिया, ठीक है, बल्कि इसका ये मतलब है ही नहीं। जहां कहीं अल्लाह ताला इस तरह की बात करते हैं ना कि वलौ शाह अल्लाह, ठीक है, वलौ शाह रब्बु का मा फअलूहु, ठीक है, या वलौ शाह अल्लाह, और भी कुरान मजीद मुख्तलिफ जगहों पर है, मुझे आयत अभी जहन में नहीं आ रही, कोई इस तरह की कि भाई वो तो वो सारे मुसलमान बन जाते, ठीक है, तो उसका मतलब खारी क्या है कि अगर जबरदस्ती बनाना होता तो अल्लाह ताला से ज्यादा जबरदस्त कौन है, यानी मुसलमानों को कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा काम बलागुल मुबीन करना है, तुम्हारा काम उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश करना नहीं है, ला इकराहा फिद दीन, ठीक है, कि दीन को कबूल करने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ला इकराहा फिद दीन, ये तो आपने भी सुना होगा ये वाली कुरान मजीद की आयत है ला इकराहा फिद दीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दीन को कबूल करने के लिए कोई डंडा नहीं है, कोई तलवार नहीं है कि आप तलवार का की धमकी दें कि अगर तुमने इस्लाम कबूल ना किया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, नहीं ये नहीं है, बल्कि हमेशा दूसरा ऑप्शन भी है, एक तो ये है कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लें आपका अपना फायदा है, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं कबूल करना चाहते तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कत्ल कर देंगे, बल्कि इसका मतलब ये है अगर आप नहीं कबूल करना चाहते ना तो फिर आप हमारी सरपरस्ती में आ जाएं, ठीक है ना, हम दुनिया का निजाम संभालेंगे और हम आपकी जान की भी हिफाजत करेंगे, आपके माल की भी हिफाजत करेंगे, आपकी इज्जत की भी हिफाजत करेंगे, हम आपको जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना रहे, वो आपकी अपनी मर्जी है, हमने तो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया ना इस्लाम को बलागुल मुबीन कर दिया ना, अब आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, ठीक है, तो जिहाद का मतलब ये नहीं है कि डंडे के जोर पे लोगों को मुसलमान बना दिया जाए, बल्कि जिहाद का मतलब क्या है कि लोगों के सामने दीन इस्लाम को पेश किया जाए, अगर वो अपनी मर्जी से कबूल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो कबूल नहीं करते तो उनको इजाजत दी जाए कि आप रहे अपने दीन के ऊपर, लेकिन हुक्म आपका नहीं चलेगा, बल्कि हुक्म तो अल्लाह ताला का चलेगा जो कि हम इन्फोर्स करेंगे, यानी मुसलमान इन्फोर्स करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला का हुक्म चलने का मतलब क्या कि भाई शरीयत के उसूल लागू किए जाएंगे, इस्लामी जो जो मुआशरा होगा, इंसानों का जो मुआशरा होगा उसके ऊपर शरीयत के उसूल लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसका शरीयत के उसूल लागू करने का मतलब ये नहीं है कि आप डंडे के जोर पर लोगों को मुसलमान बना रहे हैं, नहीं। तो फिर क्या मतलब है? चले आपसे पूछते हैं, शरीयत के उसूल लागू करने का क्या मतलब है? अगर ये मतलब नहीं है कि लोगों को डंडे के जोर पर मुसलमान बनाया जाए, तो फिर आप शरीयत क्यों नाफिज करते हैं? शरीयत नाफिज करने का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है वो कोई चोरी कर रहा है तो उसको बता दिया जाए कि अगर तुमने चोरी करी है ना, अगर तुमने चोरी करी तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं शरीयत नाफिज करना। अगर तुमने शराब पी तो तुम्हें कोड़ा लगाया जाएगा, इसको कहते हैं शरीयत नाफिज करना। ठीक है, और जो बाजार में भी जो शरीयत के उसूल हैं तिजारत के वगैरह के, तो वो शरीयत के मुताबिक फॉलो किए जाएंगे। अगर कोई उन उसूलों को तोड़ता है तो उसको कोई ना कोई सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये शरीयत के उसूल नाफिज करना कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को ईमान लाने पर मजबूर कर रहे हैं, ये इसका मतलब नहीं होता। तो फिर इसका क्या मतलब होता है? फिर क्यों किए जाते हैं शरीयत के उसूल नाफिज? जब मुसलमान इस्लामी हुकूमत बन जाती है तो वो इस्लामी हुकूमत शरीयत के उसूल नाफिज क्यों करती है? हालांकि लोगों को मुसलमान बनाना तो इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो बना ही नहीं सकती। वो हिदायत तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, इस्लामी हुकूमत के हाथ में क्यों थोड़ी रखी है ये वाली हिदायत कि लोगों को मुसलमान बना दो। तो फिर इस्लामी हुकूमत को ये क्यों हुक्म है कि तुम शरीयत के उसूल नाफिज करो? क्यों? ये हम आपसे पूछ रहे हैं। किसी ने जवाब लिखा है अमन व खैर ख्वाही, लेकिन इससे तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही, तो किसी और की क्या समझ में आएगी? और खिलाफत की जिम्मेदारी को अदा करें डिसिप्लिन के लिए, ये बेहतर जवाब है, डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, बेहतर जवाब है, अगरचे कि इससे भी बात पूरी समझ नहीं आ रही। तो शरीयत के उसूल फिर क्यों नाफिज किए जाते हैं इस्लामी हुकूमत के अंदर? जैसे मदीना मुनव्वरा में नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके तशरीफ लाए, इस्लामी हुकूमत बनाई, तो उस हुकूमत के अंदर पर शरीयत के उसूल मदीना मुनव्वरा में नाफिज किए गए, अल्लाह के नबी ने नाफिज किए, राइट? तो जब अल्लाह के नबी को पता था ये बात कि भाई मुसलमान बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, इन्नक अल्लाह तहदी मन अहबबता, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को बता अपने नबी को बता दिया कि आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, चाहे आप कितना ही चाहें आप लोगों को हिदायत नहीं दे सकते। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को शरीयत के उसूल नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला ने क्यों कहा? ठीक है, क्यों? उसका जवाब यहाँ पे किसी ने लिखा, ताकि जो फॉलो करना चाहें उनके लिए शरीयत पर अमल करना आसान हो। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और दूसरा जवाब भी बहुत अच्छा है कि मुआशरे की स्मूथ रनिंग के लिए, जो कि वही बात दूसरे अल्फाज में आपने लिखी है के मुआशरे की स्मूथ रनिंग के लिए। ठीक है, ताकि नज्म व जब्त कायम हो और फसाद ना हो। ठीक है, मुआशरे में नज्म व जब्त कायम हो, मुआशरे में फसाद ना हो, ठीक है, स्मूथ रनिंग हो रही हो, अमन हो, अमान हो, सो दैट, ताकि फिर क्या फायदा हो? अमन अमान होगा, फायदा क्या होगा कि माहौल बनेगा, माहौल बनेगा जिससे कि इंसानों के कल्ब जो हैं वो फिर इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो सकेंगे। यानी एक फैसिलिटेशन हो रही है बेसिकली कि अल्लाह के बंदे इस्लाम कबूल कर लें, क्योंकि जब वो ये देखेंगे कि इस्लामी अहकामात से मुआशरे में जाहिरी अमन भी कायम हो रहा है और बातनी अमन भी कायम हो रहा है, लोगों के दिल भी सुकून है, सुकून में है, अल्लाह बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, है ना भाई, जब अल्लाह के याद वाली जिंदगी गुजारेंगे, यानी अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाली जिंदगी, ये होती है अल्लाह की याद वाली जिंदगी, तो अल्लाह की याद वाली जिंदगी गुजारेंगे, अहकाम पे अमल करने वाली जिंदगी गुजारेंगे, तो खुद भी सुकून से रहेंगे, और जब खुद भी सुकून से रहेंगे तो उनके घर के अफराद भी सुकून से रहेंगे, लड़ाई दंगा फसाद चीख चिल्ला उठा पटख मार पीट ये घरों में नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना, तो घर भी फसाद से महफूज रहेंगे और फिर मोहल्ला भी फसाद से महफूज रहेगा, ठीक है, तो जब ये लोग देखेंगे तो उनके दिल माइल होंगे इस्लाम लाने की तरफ, ठीक है, और जो लोग पहले से इस्लाम लाए हुए होंगे उनके दिल और जो है वो पक्के हो जाएंगे इस्लाम के ऊपर। तो ये क्या है, माहौल प्रोवाइड करना, फैसिलिटेटिव माहौल प्रोवाइड करना, तो शरीयत का निफाज जो है ना ये माहौल प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, अमन अमान वाला माहौल और फसाद यानी नो फसाद वाला माहौल, ठीक है, इस वजह से कोई ये ना समझे कि भाई जब दीन में कोई सख्ती नहीं है तो अब जो है ना वो मैं तो नहीं बल्कि कोई भी अगर चोरी कर रहा है तो जब सख्ती नहीं है दीन में कोई सख्ती नहीं है तो उसका हाथ क्यों काट रहे हैं भाई आप, उसकी मर्जी, चोरी करना चाहे चोरी करे, है ना भाई, ला इकराह फी दीन, आप क्यों शरीयत हाफिज करने क्यों उसका हाथ काट रहे हैं, करने दें उसको चोरी, वो भाई जब वो चोरी करेगा तो फिर जिसकी मिल्कियत तो उसने चोरी करी है तो क्या वो बहुत मुतमईन रहेगा, क्या वो बहुत सुकून से बैठा रहेगा कि मेरा माल उठा करके तुम ले जाओ भाई, या तो वो उसके पीछे भागेगा उससे जो माल छीन करके लाने की वापस कोशिश करेगा, ठीक है ना, या ये कि फिर रोता धोता फिरेगा कि मेरा माल चोरी कर लिया, मेरा फलाना चोरी कर लिया, मेरे ये कर चोरी कर लिया, मेरे वो चोरी कर लिया, तो टेंशन रहेगी ना फिर हर वक्त, ठीक है ना, या तो लड़ाई दंगा फसाद के वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है और ये जो है वो उससे अपने आप को बचाने अपने माल को बचाने की कोशिश कर रहा है तो लड़ाई हो रही है, या ये कि वो चोरी करके ले गया अब जो है ये परेशान बैठा हुआ है कि यार ये क्या मुसीबत है मेरी चीजों लोग चोरी करके ले जाते हैं, कोई हिफाजत ही नहीं है, कोई अमन ही नहीं है, राइट, उसी तरह से और भी सारे के सारे मसले, ठीक है, तो ये माहौल की प्रोवाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने ये उसूल ये कवानीन बनाए, जिस तरह से काफिर भी कवानीन बनाते हैं लेकिन वो काफिरों के अपने बेवकूफी वाले कवानीन ज्यादा होते हैं उसके अंदर, लेकिन बनाते हैं ना कवानीन, अमेरिका में ये तो नहीं है कि देर इज नो लॉ, जो मर्जी आए आप आकर के करें, नहीं, वहां पे भी जाकर के आप चोरी करने की कोशिश करें तो अमेरिका की पुलिस भी आपको पकड़ लेगी, भाई अगर आजादी है जो मर्जी आए करो तो भाई चोरी करने की भी आजादी होनी चाहिए, किसी को कत्ल करने की भी आजादी होनी चाहिए, नहीं नहीं जी हमारा कानून यह है कि कोई आप जाके किसी को कत्ल नहीं कर सकते, है वहां पे आजादी किधर गई, अगर आजादी की बात करते हो तो 100% आजादी होनी चाहिए, तो वहां पे बात समझ में आती है कि अच्छा नहीं भाई उसको जिंदा रहने की भी तो आजादी थी ना, तुमने उसकी जिंदा रहने की आजादी को तुमने छीन लिया, तो भाई यही तो दीन इस्लाम भी तो यही कहता है किसी की जिंदा रहने की आजादी है, तुम जाकर के उसको कैसे छीन सकते हो, तो इस वजह से अगर तुमने कोशिश करी तुम्हें रोका जाएगा, अगर तुमने किसी को कत्ल कर दिया तो फिर ऐसी सजा दी जाएगी कि आइंदा कोई जुर्रत ना कर सके कत्ल करने की किसी को, सरे सरे आम जो है तुम्हारा सर कलम किया जाएगा ताकि कोई और हिम्मत ना कर सके किसी और की जान लेने की, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं है कि अच्छा माहौल प्रोवाइड करना, ठीक है ना, या ये कि ये आयत ये नहीं कह रही कि भाई जबरदस्ती नहीं करनी है कोई तो इसका मतलब ये है कि गंदे माहौल में उठा करके भेज दो अपनी औलाद को, ठीक है ना, अपनी औलाद को ऐसे जगहों पे भेज दो जहां पर के बेहयाई भी हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी भी हो रही है, अल्लाह के बल्कि वजूद का ही इनकार हो रहा है, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, राइट, स्पेशली इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो कि कॉलोनियल पावर्स के बनाए हुए हैं, हमारे मुसलमानों के बनाए हुए, तो खत्म हो गए ना, ठीक है ना। तो तालीम के तो खिलाफ कोई जाहिल ही हो सकता है, हम तालीम के खिलाफ तो नहीं है, हम तो उस तालीम के खिलाफ हैं जो कि अल्लाह की नफी करे, जो रसूलुल्लाह की नफी करे, राइट। तो आप अगर उसके हक में हैं तो आप अपने ईमान की खैर बनाएं, फिर उसके बाद अगर आप उसके हक में हैं तो आप अपने ईमान की खैर बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उसके हक में नहीं है, ठीक है ना। अब मजबूरन कोई अल्टरनेटिव रास्ता इख्तियार करना वो अलग बात है, वो तो मजबूरन है ना, जबरन है, लेकिन दिल तो हमारा उसके हक में नहीं है कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी अच्छी तालीम होती है, तरबियत होती है, और ये होती है वो होती है। नहीं भाई, हम बिल्कुल भी इसके हक में नहीं है, जहाँ पे कि अल्लाह की नफी हो रही हो उसके कहाँ से हक में हो सकते हैं, ठीक है। बहरहाल तो उस माहौल में भेजो क्योंकि दीन में कोई सख्ती नहीं है, कोर्स नॉट। माहौल बनाना दिस इज नॉट इक्वल टू फोर्सफुली मुसलमान बनाना, दिस इज नॉट द सेम थिंग। फोर्सफुली मुसलमान बनाना ये नाजायज है, ये मना है, लेकिन फैसिलिटेट करने के लिए अच्छा माहौल बनाना और डीफैसिलिटेट करने के लिए बुरे माहौल से बचाना, ये तो दीन का हिस्सा है, ये तो लाजमी बातें हैं। बात समझ में आ रही है? ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये फोर्सफुली मुसलमान बनाना नहीं है ये, बल्कि फैसिलिटेट करना है, माहौल का ये मकसद होता है। उसी तरह से औलाद के लिए भी यही चीज अप्लाई होती है, जिस तरह से के शरीयत के उसूल किसी इस्लामी मुआशरे के लिए अप्लाई होते हैं, उसी तरह से घर के अंदर औलाद के लिए भी यही चीज अप्लाई होती है, और औलाद के जो तालीमी इदारे जिनके अंदर आप उनको भेज रहे हैं वहां पर भी यही चीज अप्लाई होती है, right? कि भाई जिस तालीमी इदारे में आप भेज रहे हैं उसमें कौन सी वाली तालीम दी जा रही है, कौन लोग वो तालीम दे रहे हैं, कौन पढ़ाने वाला है, क्या निसाब है वहां का, क्या माहौल है वहां का। तो ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ भी गई होगी और आइंदा भी याद रहेगी, ठीक है। दिस इज नॉट वन एंड द सेम थिंग, फोर्सफुली मुसलमान बनाना नहीं है ये। तो आगे हजरत लिखते हैं कि भाई अगर जबरदस्ती मुसलमान बनाना होता ना तो अल्लाह ताला ज्यादा जबरदस्त कौन है, अल्लाह ताला सबको जो है वो जबरदस्ती मुसलमान बना लेते खलास है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे लोग तो पहले ही बनाए हुए थे जो अल्लाह ताला के हुक्म से पहले ही मुसलमान है, वो कौन थे? फरिश्ते। फरिश्ते तो सारे के सारे यानी फरिश्ते तो सारे के सारे मानने वाले हैं ना, तो फरिश्तों की तो पहले से नस्ल मौजूद थी, अब इंसान बनाने की क्या जरूरत थी? अगर मानने वाले ही और बनाने थे तो और फरिश्ते ही बना देते, तो फरिश्ते तो पहले ही मौजूद थे, तो अब तो इंसान बनाने थे ना, तो इंसान जो है ये तो वही है ना जिनको के इख्तियार दिया गया कि भाई तुम मानो या ना मानो, मानोगे तो फायदा होगा, ना मानोगे तो नुकसान होगा, लेकिन चॉइस इज योर्स, इसी वजह से इंसान बनाए गए, ठीक है। और इंसानों पर जबरदस्ती नहीं है कि तुम मानो, दिल से मानो, यानी दिल से मानो, इसकी जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो वो खुद ही सबको मुसलमान बना देते, और इन आयात में मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए ये भी बता दिया गया कि अगर हम उनके मांगे हुए मोजज़ात को भी बिल्कुल खुले और वाजह तौर पर जाहिर कर दें, ये जब भी इस्लाम ईमान नहीं लेकर के आएंगे, यानी दिल से ये फिर भी नहीं मानेंगे, ठीक है, यानी ये जो हठ धर्म लोग हैं ना, ये दिल से फिर भी नहीं मानेंगे। क्या लिखा था ये आखिरी में, इसमें मैंने पढ़ा नहीं था तो अभी पढ़ लेते हैं कि दीन जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है जिसमें हर चीज आ जाती है। चले तो हाँ, क्योंकि उनका इनकार किसी गलत फहमी या नावाकफियत की वजह से नहीं है। गलत फहमी का मतलब क्या हुआ कि नऊज बिल्ला नबी अलैहिस्सलाम ने बात सही तरह समझाई नहीं तो काफिरों को गलत फहमी हो गई, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम ने तो बिल्कुल सही सही बात समझाई, कुरान मजीद के अल्फाज में भी बिल्कुल सही सही बात समझाई गई, ठीक है, और उन तक इल्म पहुंचा दिया गया, तो ना वाकफियत भी नहीं थी और गलत फहमी भी नहीं थी, तो फिर वो क्यों नहीं मानते थे? वो किस लिए नहीं मानते थे? जिद और इनाद यानी दुश्मनी, और हठ धर्मी से है, ठीक है। यानी उनका जो इनकार की वजह है ना, वो ये हठ धर्मी, जिद, इनाद, बस ये है कि वजह ना वाकफियत भी नहीं है इसकी वजह, और गलत फहमी भी इसकी वजह नहीं है। तो अब ये जो जिद और हठ धर्मी है ना, तो फरमाते हैं कि जिसका इलाज किसी मोजजे से नहीं हुआ करता, कि अल्लाह ताला मोजजा दिखा दें तो उनकी जिद खत्म हो जाएगी, नहीं। बल्कि अच्छा आखिरी आयत, वलो अन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइका में इसी मजमून का बयान। तो ये आयत जो है ना, ये 8वें पारे की पहली आयत भी इसी वजह से मोटी मोटी भी लिखी हुई थी हमारे कुरान के अंदर। तो इस आयत में इसी मजमून का बयान है कि अगर हम उनको उनके फरमाइशी मौजजात सब दिखला दें, बल्कि उनकी फरमाइशों से भी ज्यादा आगे बढ़ करके फरिश्तों से उनकी मुलाकात और मुर्दों से उनकी गुफ्तगू करवा दें, जब भी वो मानने वाले नहीं, ठीक है ना, जब भी वो मानने वाले नहीं। अच्छा, रिवीजन के तौर पर और क्विज के तौर पर, ठीक है, हम आपसे पूछते हैं कि जब हम तर्जुमा पढ़ रहे थे या खुलासे तफसीर पढ़ रहे थे, तो उसकी एक वजह बयान करी थी यहाँ पर, कि ये बहुत ही अजीब बात लगती है कि किसी के सामने मुर्दे आ जाएं और किसी के सामने जो है फरिश्ते आ जाएं, वो उनसे बातें करना शुरू कर दे, लेकिन फिर भी वो ना माने। यानी नबी अलैहिस्सलाम के कहने पर फरिश्ते आ जाएं उनके सामने, ठीक है, या नबी अलैहिस्सलाम जाकर के कब्र के ऊपर जाकर के हुक्म दें कि सारे मुर्दे उठ के बाहर आ जाओ और इन लोगों से बातचीत करना शुरू कर दो, ठीक है ना, तो फिर भी वो बात ना माने कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के रसूल है, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, फिर भी वो ना माने, ये कैसे हो सकता है यार? इजन दिस अ लिटिल टू मच? हम कहते हैं ना यार, ये तो बहुत ज्यादा ही बदगुमानी हो गई उनके साथ, ये तो बहुत ज्यादा ही बदगुमानी हो गई कि आप कह रहे हो कि फिर भी नहीं मानेंगे वो लोग, अगर नबी अलैहिस्सलाम के कहने पे मुर्दे भी उठ करके आ जाएंगे फिर भी वो बात नहीं मानेंगे, तो ये तो बहुत बदगुमानी हो गई यार। इतना बदगुमान भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ, है ना, हम ये कहते हैं ना हम ये बात, इतना बदगुमान भी नहीं होना चाहिए यार किसी के साथ। तो अल्लाह ताला फिर उनके बारे में इतना बदगुमान, नाउज बिल्ला, हम अपनी समझ के लिए खाली इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि ये फिर भी नहीं मानेंगे, क्या वजह थी इसकी, जो कि बहुत आसान सी सिंपल सी वजह है कि अल्लाह ताला ये बात क्यों कह रहे थे, ये फिर भी नहीं मानेंगे, क्या वजह बयान की थी तर्जुमा पढ़ने के दौरान, किसी को याद है? ठीक है, इन्होंने सही जवाब दे दिया, तो चलें हम आगे बढ़ते हैं कि इट वॉज़न्ट दैट दे डिडंट बिलीव इन अल्लाह, हाँ अहकामात वॉज द प्रॉब्लम। ये तो आपने आगे की बात बता दी ना, तो अभी तो हम उस पर आए नहीं थे, लेकिन पहला जवाब यही था कि ये सब बातें तो ये पहले ही मानते थे, बाकी बातों को तो ये पहले ही मानते थे, इनको मसला फरिश्तों के साथ नहीं था, इनको मसला इस बात से नहीं था कि फरिश्ते नहीं हैं और ये कहते हैं कि फरिश्ते हैं, भाई वो कहते थे हम तो पहले ही फरिश्तों को मानते हैं, हत्ता के वो तो फरिश्तों का अल्लाह की बेटी भी मानते थे, पहले ही जो है वो मुर्दों के पता था कि हाँ भाई मुर्दे जो है वो बात कर सकते हैं, इस तरह की यानी चीजें इन लोगों के लिए कोई नई चीजें नहीं थी। सारा मसला इनको किस चीज के साथ था, सारा मसला इनको नबी अलैहिस्सलाम की जात के साथ मसला था, आपसे सिर्फ से मसला था, तो आपसे सिर्फ से मसला था से मुराद आपसे सिर्फ की जात से मसला था। अब इसका क्या मतलब, क्या नबी अलैहिस्सलाम की की रंगत इनको अच्छी नहीं लगती थी, या इनको नबी अलैहिस्सलाम का कद अच्छा नहीं लगता था, या इनको नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो खानदान अच्छा नहीं लगता था? मैं तो पता चलता है कि इनको नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल भी बहुत अच्छी लगती थी, नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो कद काठ भी बहुत अच्छा लगता था, नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फें भी बहुत अच्छी लगती थीं, नबी अलैहिस्सलाम का खानदान भी बहुत अच्छा लगता था, तो फिर क्या मसला था नबी अलैहिस्सलाम के साथ, क्यों मसला था इनको नबी अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। तो उसका जवाब आप लोगों ने माशाल्लाह पहले ही दे भी दिया है कि इनको सिर्फ ये मसला था कि ये जो है ना, इन्होंने हमें हमारी रोक टोक क्यों शुरू कर दी है, इन्होंने हमारी रोक टोक क्यों शुरू कर दी है? ठीक है, कि हमें ये कहते हैं कि ये काम करो वो काम ना करो, ये काम जो वो तुम नहीं करते हो वो करो, और ये काम जो तुम करते हो ये तुम ना करो, इसको कहते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं ना रोक टोक करना, ये सारा मसला था, रोक टोक करना ये सारा मसला था। अगर नबी अलैहिस्सलाम ये वाला काम ना करते ना, रोक टोक करने वाला काम, किसी को कोई मसला नहीं होता नबी अलैहिस्सलाम के साथ, किसी को कोई मसला नहीं होता नबी अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है ना। बड़े प्यारे लहजे में आकर के कुछ कुछ शेरो शायरी करना शुरू कर देते, ठीक है ना, और कोई बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताना शुरू करते थे कि तुम लोग जब मरोगे ना तो तुम्हें जो है वो हूरें मिलेंगी, और तुम जब मरोगे तो तुम्हें ऐसे बागात मिलेंगे, और तुमको अभी बल्कि दुनिया में मिल जाएंगे बहुत सारे, जो पहले मिले हुए उनसे भी ज्यादा मिल जाएंगे, बस मिल जाएंगे, बस कुछ करो ना करो फिर भी मिल जाएंगे तुम्हें। तो एवरी वन वुड लव नबी अलैहिस्सलाम इवन मोर, जितना पहले मोहब्बत करते थे ना, और ये नबी अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते थे कि ये हमारे भाई अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब के बेटे हैं, और बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं, सादिक हैं और अमीन हैं, और बच्चे बेहतरीन जो है वो पर्सनैलिटी हैं, राइट, बेहतरीन फैसला किया उन्होंने जब हमारे दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हो गया था कि हजर अस्वद को कौन रखेगा, तो उन्होंने बेहतरीन जो है वो उसको मामले को रिजॉल्व कर दिया। ऑल लव नबी अलैहिस्सलाम, और जब नबी अलैहिस्सलाम अगर इस तरह से उनको और लारे लप्पे देना शुरू कर देते ना कि ये तुम्हें ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी, तो फिर और मोहब्बत बढ़ जाती है इनकी नबी अलैहिस्सलाम के लिए। मसला सारा का सारा क्या था? रोक टोक के साथ मसला था, रोक टोक के साथ, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, जैसा कि हमारे साथ, आज हमारे साथ भी यही है। हमारे शेख साहब आज है ना चुप शाह, हमारे अजय जी भी फरमाया करते ना कि चुप शाह जो होता है ना, चुप शाह, कि मुरीद जो भी कर रहा है शेख साहब चुप चुप करके बैठे हैं, और अगर मुरीद ने आकर के शेख को कुछ हलवे दे दिए, हलवे तो, हलवे तो और सीमेंट बन जाते हैं जिससे के होंठ चिपक जाते हैं, फिर शेख के होंठ चिपक जाते हैं। जब मुरीद आकर के हदिये देता है ना, तो हदिया गोया के हलवा, और हलवा जो है वो शेख के होंठों का सीमेंट, वो शेख के होंठों को चिपका देता है, फिर अब शेख कुछ भी नहीं बोलता, मुरीद कुछ भी करे, इसी को चुप शाह भी कहा जाता है, कुछ नहीं कहते भाई, जो चाहो करो। ऐसे शेखों से तो सब मोहब्बत करते हैं, है ना, ऐसे पीर भाई पीरों से, ऐसे शेखों से, ऐसे मौलवियों से भी जो किसी को कुछ ना कहें, एवरी वन लव्स देम, एवरी वन लव्स देम। मसला कब शुरू होता है? जब रोक टोक शुरू हो, मसला तब शुरू होता है। रोक टोक से सिर्फ वो शख्स मोहब्बत करता है, रोक टोक को सिर्फ वो शख्स पसंद करता है कि जो के यकीन रखने वाला हो कि इस रोक टोक में उसकी भलाई है, इस रोक टोक में उसकी खैर है, उसके लिए फायदा है रोक टोक। ये जो बता रहे हैं ना कि ऐसा काम करने से अल्लाह राजी होगा और ऐसा काम करने से अल्लाह नाराज होगा, तो वाकई ये सच बोल रहे हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो अल्लाह राजी होगा, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं मुझसे, ये सच बोल रहे हैं। और जो ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने ये काम किया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा तुमसे और तुम अल्लाह की सजा के मुस्तहिक बन जाओगे, ये झूठ नहीं बोल रहे, ये सच बोल रहे हैं। तो रोक टोक करने वाले की बात को सच्चा मानना, ठीक है, पहली बात, और दूसरी चीज क्या, कि वाकई उसको फिक्र भी हो कि हाँ यार अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो वाकई मुझे फिर मैं क्या करूंगा, जब मुझे सजा मिलेगी मैं कैसे अपने आप को सजा से बचाऊंगा ना। तो जिसको फिक्र पड़ जाए कॉन्सिक्वेंसेस की, अंजाम की फिक्र पड़ जाए, सिर्फ ऐसे शख्स को रोक टोक अच्छी लगती है, सिर्फ ऐसे शख्स को रोक टोक अच्छी लगती है, बाकी हर एक को बुरी लगती है, हर एक को बुरी लगती है रोक, ठीक है ना। दाढ़ी रखेगा अपनी मर्जी से रखेगा, किसी के कहने पर नहीं रखेगा, ठीक है ना, पर्दा करेगी जब इसको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार पर्दा जो है वो करना चाहिए मुझे, कर लेगी। लेकिन कोई इसको कहेगा ना तो कहेगी नहीं, तुम कह क्यों रहे हो मुझे, कहो नहीं तुम मुझे, मुझे जब समझ में आएगा तो मैं कर लूंगी, तुम क्यों कह रहे हो, तुम क्यों कह रहे हो मुझे पर्दा करने के लिए, क्यों? इसलिए कि नफ्स जो होता है ना, जब अम्मारा होता है और जो उसको फिक्र नहीं होती ना अंजाम की, तो इसको रोक टोक सबसे बुरी चीज लगती है, सबसे बुरी चीज लगती है। ठीक है, तो वो कहते हैं मैं अपने टाइम पे, आई विल बिकम मुस्लिम ऑन माई ओन टाइम, राइट, आई विल एग्री टू दीन व्हेन आई विश टू एग्री टू दीन, यानी मेरा नफ्स जब चाहेगा ना तो उस वक्त मैं दीन के, मैं नमाज पर पढ़ना शुरू कर दूंगी, मेरा नफ्स चाहेगा तो मैं दीन की इल्म भी हासिल करना शुरू कर दूंगी, मेरा नफ्स चाहेगा तो मैं पर्दा भी करना शुरू कर दूंगी, मेरा नफ्स चाहेगा तो मैं ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, तुम कहो मत मुझे कुछ। यही मामला उनका भी था, यही मामला। नबी अलैहिस्सलाम अगर रोक टोक छोड़ देते, किसी को मसला नहीं होता नबी अलैहिस्सलाम से, किसी को मसला नहीं होता नबी अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना, फॉर द टाइम बीइंग। बाद में फिर मसला होता कि यार ये हमारी तरह क्यों नहीं है, बाद में मसला होता उनको कि ये अपनी अलग जिंदगी क्यों मुझे गुजार रहा है, ठीक है ना, लेकिन शुरू में किसी को मसला नहीं होता। तो ये चीज है, अल्लाह करे हमें समझ में आ जाए। कुरान पढ़ करके सुन रहे हैं, तफसीर अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं, पुराने जमाने के वाकयात सुन रहे हैं, तो मकसद क्या है, फायदा क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ये बात हमें समझ भी नहीं आई कि हम इस गलती से तौबा कर लें, ठीक है, और रोक टोक करने वाले को अपना मुसलह समझना शुरू कर दें, अपना खैर ख्वाह समझना शुरू कर दें, ऐसा ना हो जैसे कि हमारे अजीज फरमाया करते थे ना, मैं उसे समझू हूं दुश्मन जो मुझे समझाए हैं, मैं उसे समझू हूं दुश्मन जो मुझे समझाता है, ठीक है, मतलब बाप समझाता है वो दुश्मन उसको समझना शुरू कर देते हैं, माँ समझाती है तो माँ को जो है वो अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं, शौहर कुछ बोल दे तो बीवी को आग लग जाती है, आगे से जो है वो काउंटर अटैक शुरू हो जाता है, तुम कौन सा बड़ा नेक हो, तुम कौन सा, भाई बहन को कुछ बोल दे बहन शुरू हो जाती है, तुमने तौबा कर ली है क्या जो मुझे कह रहे हो तौबा करने के लिए, है? और बहन भाई को बोल दे कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं करें इससे नुकसान होगा, तो भाई जो है वो बहन के ऊपर चढ़ जाता है कि तुम कौन सी बड़ी नेक हो, तुम ऐसा क्यों कर, तुम ऐसे क्यों मुझे क्यों बोल रही हो, है? ये भी कहते हैं कि जाकर के आईने में अपनी शक्ल देखो, इस तरह के अल्फाज हमारे यहाँ कितने राइज हैं, क्यों? इसलिए कि हम ईमान वाले नहीं है, कि अल्लाह के हुक्मों पर हमारा एतमाद नहीं है कि ये सच है, ये अल्लाह के वादों पर हमारा एतमाद नहीं है कि ये सच है, झूठे मुसलमान हैं, पकते हैं हम कि हम मुसलमान हैं, हम हकीकत में मुसलमान नहीं, ठीक है ना, ये कैसा मुसलमान जो अल्लाह के वादों को झूठा मानता हो, झूठा समझता हो, ठीक है ना, और आखिरत की फिक्र नहीं, तो इस वजह से जो नसीहत करने वाला होता है, अहकामात बताने वाला होता है, बुरा लगता है उसको, उसकी बात जो है वो हमारे अंदर आग लगा देती है उठा करके, बाकी तो फिर चुपशा वाले पीर जो हैं उनको तो सभी लाइक करते हैं भाई, या बूढ़े इतने हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं और फिर वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी अपने जो है वो उस लेवल पे पहुंचने के बाद फिर अब वो कहते हैं भाई अब जो मेरे खुलफाए हैं अब वो रोक टोक करेंगे, अब मैं क्यों रोक टोक करूं, वो तो दादा पीर होते हैं ना, दादा पीर, दादा पीर, दादा का काम क्या होता है, रोक टोक करना नहीं, दादा का काम होता है शफकत करना, है ना भाई, कभी देखा है आपने दादा को जो है वो रोक टोक करते हुए, रोक टोक तो बाप ने करनी होती है ना, जब आप दादा बन गए तो दादा ने तो शफकत करनी होती है, फिर दादा तो पोते को अच्छे लगते हैं ना, फिर दादा अब्बू राइट, लेकिन रोक टोक तो बाप ने करनी होती है, बाप बुरा लगता है, ठीक है ना, तो हम भी ना जब इतने बुजुर्ग हो जाते हैं ना, जब वो रोक टोक करना उनका गुजर जाता है टाइम, तब वो हमें बहुत अच्छा लगने शुरू हो जाते हैं, हजरत जी हजरत जी हजरत जी हजरत जी, क्योंकि हजरत जी रोक टोक ही नहीं करते, है ना, तो बड़े अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं उसके बाद वो, ठीक है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसी अल्लाह वालों से मोहब्बत का कोई फायदा नहीं है जब उनका जो मकसद जिंदगी था आप उसकी नफी कर रहे हैं। ऐसी मोहब्बत जो है ना, फिर वो वैसी हो गई फिर, जो जैसे कि मुशरिकीन की मोहब्बत हुआ करती थी नबी अलैहिस्सलाम सलाम के लिए, जब वो रोक टोक नहीं करते थे जो जमाने में। ठीक है, आगे अल्लाह ताला के जो आयात हैं वो तो फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो पढ़ने का भी फायदा है उसी वक्त है ना, जब आज की बात समझ में आ गई और आज की बात हमने मान ली, तब आगे पढ़ने का भी फायदा है, और पीछे भी हमने पढ़ चुके हैं उसका भी हमें फायदा होगा। अल्लाह ताला हमारे इल्म को हमारे लिए इल्म नाफे बना दे, यानी फायदा बख्श, फायदा मंद बना दे, और हमें अपने मुकर्रब बंदे बंदियों में शामिल करवा लें। हमें बात करना नहीं आता, बस आपके किस्मत में यही आया है, जैसे आप बात करते हैं आप उसी को समझने की कोशिश कर लिया करें। अल्लाह ताला आपसे राजी हो, आपसे खुश हो। ठीक है, आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।